వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీనితి నామనే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే కృష్ణ. కల్ హమ్నే డిస్కస్ కర్ లియా థా ఛఠవే అధ్యాయ తక్ ఔర్ ఆజ్ హమ్ స్టార్ట్ కరేంగే ప్రథమ ఫస్ట్ కాంటో అధ్యాయ సాత్. అధ్యాయ సాత్ కా టైటిల్ హై కి అధ్యాయ సాత్ కా కంటెంట్ హై వో ఇస్ ప్రకార్ సే హై కి అశ్వత్థామా కే ద్వారా పాండవో కే పుత్రో కో మార్ దియా జాతా హై ఔర్ ఉస్కే బాద్ పరీక్షిత్ మహారాజ్ కి రక్షా హోతీ హై భగవాన్ కృష్ణ కే ద్వారా. తో एसेंशियली सातवां अध्याय स्टार्ट होता है कि व्यासदेव ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने भगवान को देखा और साथ साथ उन्होंने भगवान की माया शक्ति को भी देखा और उसके बाद ध्यान में उन्होंने भगवान की लीलाओं के दर्शन किए और इस तरह से उन्होंने भागवतम को कंपाइल किया. यहाँ से सातवां अध्याय स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद श्रील सुत गोस्वामी बताना प्रारंभ करते हैं परीक्षित महाराज के बारे में, क्योंकि चौथे अध्याय में जो प्रश्न पूछा गया था वो परीक्षित महाराज के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था. परीक्षित महाराज की लाइफ बताइए, उन्होंने क्यों शरीर त्याग किया और क्या क्या घटनाक्रम था, ये सब कुछ पूछा गया था. तो यहाँ से वो प्रारंभ होता है सातवें अध्याय से. और ये श्रीमद भागवतम में जो महाभारत का डिस्क्रिप्शन चालू होता है, ये डिस्क्रिप्शन कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद से चालू हो रहा है, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव और कौरवों की सेना के ऑलमोस्ट सभी लोग मारे गए. उसके बाद दुर्योधन भी भूमि पे गिरे हुए थे भीमसेन से फाइट होने के बाद. दुर्योधन के घुटने और रीढ़ की हड्डियां टूट चुकी थी. उसी समय दुर्योधन के पास अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पहुंचते हैं और दुर्योधन से अश्वत्थामा बोलते हैं कि मैं आपका अभी सेनापति हूँ, अभी भी मैं पांडवों को हरा के आपके पास लेके आऊंगा, पांचों पांडवों का सिर आपके पास लेके आऊंगा. तो इस तरह से बोलने के बाद जब अश्वत्थामा जाते हैं तो पांचों पांडवों के जो पुत्र हैं, द्रौपदी के पांच पुत्र थे, हर एक पांडव के साथ एक एक पुत्र था. तो उन पांचों पुत्रों को जब वो सो रहे होते हैं अपने कैंप में, उस दिन खत्म कर देते हैं. भगवान कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं और बाकी पांडवों को बचा लेते हैं, क्योंकि जिस दिन युद्ध खत्म होता है ये पांडव लोग भी वहां पे कैंप में जाने के लिए कैंप में जाके सोने वाले रहते हैं. परंतु भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जिस दिन हमने युद्ध विजय की है उस दिन अपने कैंप में विश्राम नहीं करना चाहिए, शत्रु के कैंप में जाके विश्राम करना चाहिए. तो ऐसा बोल के भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेके कौरवों के कैंप में जाके रात में विश्राम किए थे. और पांडवों के कैंप में आके ये अश्वत्थामा ने पांडवों को समझ के पांडवों के पांच बच्चों को मार डाला, क्योंकि अश्वत्थामा को उस दिन वरदान मिला था, एक दिन के लिए वरदान मिला था कि उस दिन उससे कोई नहीं जीत पाएगा. भगवान शिव ने उसको वरदान दिया था. तो इस कारण से पांचों पांडवों की बजाय पांचों पांडवों के पुत्र जो थे उनको अश्वत्थामा ने मार डाला सोते समय. और जब इन पुत्रों को दुर्योधन के पास लेके गए और अश्वत्थामा ने सोचा कि दुर्योधन बहुत खुश हो गए, परंतु दुर्योधन उनको देख के बहुत दुखी हुए. दुर्योधन ने बोला कि आपने अनर्थ कर दिया, हमारे वंश के ये पांच पांडवों के जो पांच पुत्र थे ये हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले थे, आपने इनको ही खत्म कर दिया, अभी हमारे वंश का क्या होगा. और दुर्योधन ने एक्चुअली दुखी होके बहुत दुख पूर्वक उन्होंने अपने शरीर को त्यागा. और जब द्रौपदी को ये न्यूज पता चलती है कि उनके पुत्रों को मार दिया गया है, तो द्रौपदी बहुत जोर से विलाप करते हैं. भागवत में इस प्रकार से आता है इस अध्याय में कि जैसे कोई गाय का बछड़ा जब उसके सामने मर जाता है, उस समय जिस प्रकार से गाय रोती है, उस तरह से द्रौपदी विलाप कर रही है। और द्रौपदी को विलाप करते देखकर अर्जुन ने शपथ ली कि मैं ये शपथ लेता हूं कि जिसने भी इनको मारा है उनको मैं तुम्हारे सामने लेके आऊंगा, और उसके बाद उसके सिर के ऊपर खड़े होके तुम स्नान करना, तब आपको ये दुख आपका ये दुख खत्म होगा। इस तरह से बोल के अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ जाते हैं, और अर्जुन अपने गांडीव धनुष को और सब सभी वस्तुओं को लेके भगवान कृष्ण उनके रथ को हाँकते हैं और अर्जुन उनके साथ जाते हैं। और अश्वत्थामा को जब पता चलता है कि कृष्ण अर्जुन दोनों आ रहे हैं, तो अश्वत्थामा तेजी से भागते हैं, परंतु अर्जुन के रथ के सामने और भगवान कृष्ण के कौशल के सामने अश्वत्थामा पस्त हो जाते हैं। अश्वत्थामा के घोड़े भी थक जाते हैं और वो सोचते हैं कि अभी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो इस तरह से सोच के अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र, जो कि संसार का सबसे बड़ा अस्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ देते हैं। हालांकि अश्वत्थामा को यह ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं आता था। ब्रह्मास्त्र संसार का सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से पूरे संसार का विनाश हो सकता है। तो अश्वत्थामा ने बिना जाने बूझे इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। भगवान कृष्ण भी नाराज हुए कि अश्वत्थामा ने इस प्रकार से इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, यद्यपि उसको वापस लाना नहीं जानता है। तो अश्वत्थामा ने जल से आचमन करके इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। उसके छोड़ते ही साथ पूरे चारों तरफ बहुत बहुत ज्यादा लाइट, ऐसा लग रहा था कि सूर्य के प्रकाश से भी तेज प्रकाश निकलने लगा। और जब ये बहुत तेज प्रकाश हो गया तो अर्जुन भी बहुत भयभीत हो गए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की कोई तोड़ नहीं है। तो अर्जुन भी बहुत भयभीत होकर भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं। भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, पूरे संसार में ये किस प्रकार का प्रकाश फैल रहा है, तो किस प्रकार से ये सभी लोग डरे हुए हैं। आप तो सबको जानने वाले हैं, केवल आप ही इससे हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने फिर बताया कि वास्तविकता में ये जो प्रकाश है, ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उसका ये प्रकाश है, और इसका केवल एक ही तोड़ है कि दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाए तब वो इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो अर्जुन ने भी आचमन किया। उसके बाद भगवान कृष्ण का परिक्रमा करके भगवान कृष्ण की परिक्रमा करके अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और जब ये दोनों के दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराए तो ऐसा लगा पूरे संसार पूरे ब्रह्मांड का विनाश होने वाला है। तो जब इस प्रकार से अर्जुन ने देखा कि पूरे ब्रह्मांड हो सकता विनाश हो जाए, तो अर्जुन ने दोनों के दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, क्योंकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना आता नहीं था, उसको केवल छोड़ना आता था, परंतु अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस लिया। और अर्जुन अभी तक बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने अश्वत्थामा को पूरी तरह से डिफीट करके उसको इस तरह से बांध दिया कि जैसे वो पशु के समान हो, और फिर उसको लेके पांडव के कैंप में आते हैं। भगवान कृष्ण फिर बोलते हैं कि ये जो तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ये वास्तविकता में ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण होते हुए भी इसने पापियों के कार्य किए हैं। इसने निर्दोष लोगों को, निर्दोष बच्चों को मारा है, तुम्हारे जो पुत्र थे उनको मारा है। और इस तरीके से मारना तो युद्ध के नियमों में भी नहीं था कि रात में सोते समय किसी को मार दिया जाए, इसलिए ऐसा व्यक्ति को मृत्युदंड मिलना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए। अश्वत्थामा को मारना उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर तुम अश्वत्थामा को नहीं मारोगे तो भविष्य में उसको बहुत बहुत कठिन होगा, उसको बहुत सारे पापों का फल मिलेगा, उसको नरक में भी जाना पड़ेगा अपने पापों का फल भुगतने के लिए। और साथ साथ तुमने द्रौपदी से प्रॉमिस भी किया है कि उसके बच्चों को मारने वाले को तुम मर्डर करके उसके पास लेके आओगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार से टेस्ट कर रहे थे, परंतु अर्जुन ने उसी समय उसको नहीं मारा। अर्जुन लेके द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लेके आए। ये कुछ इंटरेस्टिंग सीन है, आगे भी आएगा इस तरह से, क्योंकि जैसे ही अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने आते हैं तो द्रौपदी बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमारे गुरु के पुत्र हैं, इनको इस प्रकार से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र के विलाप कर रही हूँ, पुत्र के वियोग में विलाप कर रही हूँ, उसी तरह से मेरे गुरु की पत्नी वो भी विलाप करेंगे। और चूंकि मेरे तो पति भी जिंदा है, परंतु मेरे गुरु के जो वाइफ है उनके तो पति भी जिंदा नहीं है, इसलिए उनके पुत्र, उनके केवल एक ही पुत्र ये बचा हुआ है, इस पुत्र को मुझे नहीं मारना चाहिए। तो ऐसा ऐसा बोल के द्रौपदी ने मना किया कि अश्वत्थामा को मत मारिए। साथ साथ युधिष्ठिर ने भी मना किया, क्योंकि वो गुरु पुत्र थे इसलिए युधिष्ठिर ने भी मना किया। परंतु भीम मारना चाहते थे, भीम बोलते थे नहीं इसको नहीं छोड़ना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने फिर अर्जुन से बोला कि नकुल, सहदेव और सात्यकी ये सभी भी युधिष्ठिर का साथ दिए, परंतु भीम डिसएग्री होते हैं। और फिर कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण स्माइल करते हुए बोलते हैं कि एक ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए, परंतु अगर वो ब्रह्म बंधु साथ साथ पापी भी है तो उसको मार देना चाहिए। अभी अर्जुन आपके पास, आपको आपको डिसाइड करना है क्या करना है, क्योंकि आपको द्रौपदी के लिए जो आपने प्रॉमिस किया है वो भी पूरा करना है, और साथ साथ शास्त्रों के नियमों को भी पालन करना चाहिए। और इस तरह से आपको पालन करना है कि भीम भी संतुष्ट हो जाए और मैं भी संतुष्ट हो जाऊं, द्रौपदी भी संतुष्ट हो जाए और युधिष्ठिर भी संतुष्ट हो जाए। तो ये वाला जो टेक्निकल केस है, इस केस को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉर्पोरेट एक सेमिनार होता है, उसमें इसी टॉपिक को लिया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कई बार जब अलग अलग स्क्रिप्चर से, अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग डिटेल्स आते हैं, तो कैसे उसको रेजोल्यूट किया जाए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार से बोला, अर्जुन उनके दिमाग को समझ गए। उस यहाँ पे अर्जुन के बारे में लिखा है कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के हृदय में एग्जैक्टली क्या चल रहा था उसको समझ गए, उसी प्रकार से उन्होंने कार्य किया। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, मारने की बजाय उनके बालों को पूरा खत्म कर दिया। तो अश्वत्थामा के सिर पे एक मणि थी, उस मणि को निकाल दिया। तो किसी व्यक्ति को मारना जो है, अगर हम उसको पूरी तरह से उसके हेड शेप कर देते हैं तो ऐसा माना जाता था कि वो व्यक्ति मर चुका है। और साथ साथ अश्वत्थामा की जो मणि निकाल दी गई थी, तो उस मणि के निकालने से अश्वत्थामा की शक्ति भी चली गई, और फिर उसके उसके बाद अश्वत्थामा को छोड़ के चले गए, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। उसके बाद फिर पांडव और कुरु वंश के जो लोग बचे थे वो गंगा गंगा में जाते हैं, और जो भी महाभारत के युद्ध में जिन लोगों का भी विनाश हुआ है, हालांकि प्रैक्टिकली सभी लोगों का विनाश हो गया, तो कुछ ही लोगों को छोड़ के, तो उन सभी के लिए गंगा जल में जाके तर्पण करते हैं। और ऐसा करने के बाद वो गंगा के बगल में बैठ के बहुत दुख करते हैं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण और बहुत सारे अलग अलग ऋषि मुनि सारे के सारे पांडवों को शांत करने का प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक गाइडेंस के द्वारा, आध्यात्मिक निर्देश देके उनको शांत करने का प्रयास करते हैं। और कुछ समय बाद फिर भगवान कृष्ण वहीं पर रहते हैं उस समय। कुछ समय बाद भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से बोलते हैं कि आप 3 अश्वमेध यज्ञ करिए। और फाइनली भगवान अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के बाद द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं। और भगवान के साथ साथ जो भी यदुवंश के जो लोग थे वो भी द्वारका वापस जाने वाले रहते हैं। भगवान अपने रथ पे चढ़ने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही भगवान रथ पे चढ़ने वाले होते हैं, उत्तरा दौड़ती दौड़ती भगवान के पास आती है। बहुत अच्छा एक श्लोक है उस समय, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वत् अभयम् पश्येद् यत् मृत्यु परस्परम्। बताते हैं पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी मेरी रक्षा करिए, देव देव जगतपते, हे जगतपति, हे सभी देवों के देव, नान्यम त्वत् अभयम् पश्येद्, आपके अलावा मुझे और कोई ऐसा नहीं देखा देख पा आज दिख रहा है जो कि मेरी रक्षा कर सके। यत् मृत्यु परस्परम्, मुझे अपनी मृत्यु सामने दिख रही है, वो आपके अलावा मेरी रक्षा करने वाला मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी है, वो भगवान कृष्ण के पास आती है और भगवान कृष्ण से इस प्रकार से प्रार्थना करती हैं। और भगवान कृष्ण तुरंत देख के समझ जाते हैं कि अश्वत्थामा ने फिर से एक ब्रह्मास्त्र जो है वो उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ा है। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे जो कि पांडव वंश के अंतिम वंशज थे, तो उनको भी खत्म करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फिर से छोड़ा है। तो भगवान ने जब ये देखा, तो भगवान ने हालांकि पूरे युद्ध में शपथ ली थी कि वो कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, परंतु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र उठाया और उत्तरा के गर्भ के अंदर जाके उस ब्रह्मास्त्र को नलीफाई कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति से उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को छीन कर दिया और स्वयं उस परीक्षित महाराज की रक्षा की। परीक्षित महाराज का नाम भी एक्चुअली इसी तरह से आता है क्योंकि परीक्षित महाराज ने अपनी माँ के गर्भ में भगवान कृष्ण को देखा था और जब वो गर्भ से बाहर आए तो वो हर व्यक्ति को देख के टेस्ट करते थे कि क्या यही वो व्यक्ति है जिनको मैंने गर्भ में देखा था। इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ क्योंकि वो सभी लोगों की परीक्षा लेते थे। इस प्रकार से तो भगवान कृष्ण ने उत्तरा का जो गर्भ था उस गर्भ की रक्षा की और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को एनकाउंटर कर दिया और वो न्यूट्रलाइज हो गया। और ऐसा करने के बाद भगवान कृष्ण फिर द्वारका के लिए जाते हैं। अभी फिर से जब वो रथ के ऊपर चढ़ के जाने वाले होते हैं कुंती देवी आती है और कुंती देवी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित करती है। कुंती देवी की प्रार्थनाएं पूरी श्रीमद भागवतम में टॉप प्रार्थनाओं में से आती हैं। कुछ कुछ भक्त बोलते हैं कि भागवतम की सबसे ऊंची प्रार्थनाएं जो है उनमें से एक है, टॉप 3 प्रार्थनाओं में से आती है। एक तो गोपी गीत जो है और 10वें स्कंद में भ्रमर गीत है, उसके बाद कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आती है। 25 श्लोक हैं कुंती महारानी ने बोले हैं और ये श्लोक अपने आप में, हर श्लोक अपने करने लायक है। जब हमारा लॉकडाउन चालू हुआ था ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल में, उस समय एक एक श्लोक के ऊपर हमने डिस्कशन किया था और ये एक्सीलेंट प्रार्थनाएं हैं। सभी भक्तों को ये पुस्तक कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़नी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी ने अलग से एक पुस्तक भी लिखी है, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, कुंती महारानी की शिक्षाएं। वो पुस्तक जितना जितना पढ़े उतना ज्यादा अच्छा लगता है। तो कुंती महारानी बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करती हैं। बेसिकली 2 थीम्स को लेके वो प्रार्थनाएं करती हैं। सूर्य की जो प्रार्थना है वो संबंधित है कि कैसे भगवान अपने आप को अलक्षित रखते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है, और फिर कौन भगवान को समझ सकता है, कौन भगवान को नहीं समझ सकता है। और बाकी कुछ 7-8 प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं में कुंती महारानी फिर बताती हैं कि भगवान का जन्म क्यों हुआ, भगवान क्यों इस संसार में आते हैं। और अंत में कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनकी भगवान की तरफ ही उनका प्रेम का प्रवाह भगवान की तरफ हमेशा होता रहे। उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला श्लोक जो कुंती महारानी बताती हैं, ये श्लोक है 8वें अध्याय का 18 नंबर का श्लोक, 1.8.18। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। इसमें बताती है नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं, हे आदि पुरुष मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ईश्वरं प्रकृते परं, आप परम ईश्वर हैं, इस प्रकृति से परे हैं आप। अलक्ष्यं सर्वभूतानां, आप किसी भी जीव को दिखाई नहीं देते हैं, परंतु अन्तर्बहिरवस्थितम्, किंतु आप उनके अंदर भी स्थित होते हैं, बाहर भी स्थित होते हैं। कुंती महारानी बोलती है मैंने प्रैक्टिकली देखा कि आप मेरे सामने खड़े थे और उसी समय आप उत्तरा के गर्भ के अंदर भी चले गए और आपने ब्रह्मास्त्र से उसके बच्चे की रक्षा भी की। इससे पता चलता है कि आप अंदर भी स्थित हैं, बाहर भी स्थित हैं। और फिर कुंती महारानी बताती है कि कैसे भगवान ने उनकी उनके बच्चों की लगातार जीवन भर रक्षाएं की, क्योंकि पांडवों को हमेशा मारने का प्रयास होता था, भगवान ने उनकी रक्षा की। कुंती महारानी बताते भी हैं कौन कौन से इंसिडेंट होते हैं। एक 22 या 23 नंबर श्लोक आता है, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभायां वनवास पृच्छता मृधे मृधे नेक महारथास्त्र तो दौन्यस्त तस्चास्मि हरे भी रक्षिता। उस श्लोक में आता है कि विशान महाग्ने, सबसे पहले तो विष दिया गया था भीम को, बचपन में ही उन भीम को विष पिलाया गया था और उनको नदी में फेंक दिया गया था। उसके बाद महाअग्नि, लाक्षाग्रह में अग्नि लगा के सबको जलाने का प्रयास किया गया। पुरुषाद अदर्शनात्, और राक्षसों से लड़ाई किया भीम ने जब वो वनवास में थे। असत सभायाम, जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ, सारे पांडवों के साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार हुआ। वनवास पृच्छता, फिर 12-13 साल का वनवास दे दिया गया, उसके बाद भी उनको जमीन नहीं दी गई। तो ये सारे घटनाएं कुंती महारानी सोचती हैं और फिर बताती हैं कि इन सभी घटनाओं में आप हमारे साथ थे, इसलिए हम इन घटनाओं को सहन कर पाए। और फिर कुंती महारानी एक प्रार्थना करती हैं जो कि बहुत सारे भक्त इस प्रार्थना को करने में डरते हैं, पर कुंती महारानी इस प्रार्थना को करती हैं। विपदा संतुता सस्व तत्व तत्व जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। वो बताते हैं कि जितनी भी विपत्तियां हैं वो आती रहें, मैं चाहते हूँ कि ये जितनी विपत्ति आई हैं ये फिर से आए, क्योंकि जितनी बार भी विपत्ति आती हैं उतनी बार हमें आपको देखने का मौका मिलता है, और आपको देखने का मतलब है कि हमें इस संसार को फिर से नहीं देखना पड़ेगा, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अगर हम आपका दर्शन करेंगे तो हमें इस संसार का फिर से दर्शन नहीं होगा। तो बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं हैं। और लास्ट में कुंती महारानी बताती हैं, त्वयि मे अनन्य विषया मत्वे मधुपते सकृत। इस प्रकार से कहिए, जैसे गंगा देवी हर संकट को पार करके समुद्र में जाके मिलती हैं, उसी तरह से मेरी चेतना भी हमेशा आप में स्थित रहे। कभी भी मेरी चेतना इस संसार में किसी वस्तु से व्यवधान नहीं आए और आप में मेरी चेतना हमेशा स्थित रहे। कुंती महारानी जब इस प्रकार से प्रार्थनाएं करती हैं, भगवान प्रसन्न होकर उसको एक्नॉलेज करते हैं और साथ साथ कुंती महारानी भगवान को ग्लोरीफाई भी करती हैं। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, भगवान की सुंदरता का वर्णन करती हैं। और फिर भगवान जब जाने वाले हैं, उसी समय जाने के पहले भगवान एक्चुअली हस्तिनापुर के राजा जो कि युधिष्ठिर महाराज हैं, उनके पास जाके उनको इन्फॉर्म करते हैं, परंतु युधिष्ठिर महाराज भगवान को रोक लेते हैं। वो फिर से बोलते हैं कि कुछ दिन के लिए और रुक जाइए। और भगवान भी देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज अभी तक दुख से बाहर नहीं आए थे, महाभारत का जो युद्ध था उससे उसके दुख से बाहर नहीं आए थे, इसलिए भगवान भी कुछ दिन और रुक जाते हैं। और कुछ दिन बाद फिर भगवान देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हैं। भगवान उनको समझाने का प्रयास करते हैं। युधिष्ठिर महाराज एक्चुअली सोच रहे थे कि उनके कारण ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और इतने सारे लोगों की मृत्यु उनके कारण हुई, वो इन सभी मृत्युओं के जिम्मेदार है। तो भगवान ने उनको समझाने का प्रयास किया। भगवान ने बोला, एक्चुअली अगर भगवान ने मन में सोचा इस प्रकार से कि अगर पहले आपको ये सब चीजें आती तो पहले आपको भगवद गीता सुना देता मैं, अर्जुन को जैसा सुनाया था, साथ में दोनों को सुना देता, अभी कैसे आपको फिर से अलग से गीता सुनाना पड़ेगा भगवान। और साथ साथ भगवान की इच्छा भी थी कि जो उनके शुद्ध भक्त हैं भीष्म देव, ये बताना चाहते थे भगवान कि कैसे भगवान के शुद्ध भक्त भीष्म देव संसार में कितने महान हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी महान हैं। इसलिए भगवान बाहर से युधिष्ठिर को समझा रहे थे और युधिष्ठिर के अंदर में परमात्मा के रूप में स्थित होके बोल रहे थे कि आप मेरी बात मत सुनो। तो भगवान ने समझाया तब भी युधिष्ठिर को शांति नहीं मिली। फिर व्यासदेव आए, व्यासदेव ने समझाया तब भी शांति नहीं मिली। तब फिर भगवान ने बोला कि अभी हम भीष्म देव के पास जाएंगे। और फिर भगवान सभी पांडवों को बोलते हैं कि भीष्म के पास चलिए। और भगवान बोलते हैं सबसे अच्छे कपड़े और सबसे अच्छे सजावट और सबसे अच्छे आलिशान तरीके से भीष्म के पास चलिए। सारे के सारे पांडव पितामह के पास जाते हैं और भगवान जानते हैं कि पितामह पांडवों को जब इस तरह से देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे, इसलिए भगवान उनको साथ में लेके जाते हैं सभी पांडवों को, क्योंकि भीष्म पितामह चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने और सभी पांडवों को उनका हक वापस मिले। इसलिए जब वो पांडवों को इस प्रकार से देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। और जब वहां पे ये लोग पहुंचते हैं तो भीष्म पितामह के दर्शन के लिए बहुत महान महान ऋषि वहां पे ऑलरेडी उपस्थित रहते हैं। वेद व्यास, धौम्य, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राजऋषि, नारद, सुखदेव गोस्वामी, परशुराम, ये सभी वहां पे उपस्थित होते हैं। भीष्मदेव जब यहाँ पे शरीर त्याग करते वाले रहते हैं तो अपने रथों से उतरने के बाद भगवान कृष्ण पांडवों के साथ आके भीष्मदेव को प्रणाम करते हैं और भीष्मदेव सभी को रिसीव करते हैं। हालांकि भीष्मदेव इस अवस्था में नहीं रहते हैं कि सबको उठ के प्रणाम करेंगे, परंतु भीष्मदेव सबका अभिवादन करते हैं, बहुत सम्मान से उनका अभिवादन करते हैं। और जब भीष्मदेव देखते हैं कि पांडव कितने दुख से उनके बगल में खड़े हैं तो भीष्मदेव भी प्रेम से बहुत आविर्भूत हो जाते हैं। और युधिष्ठिर और पांडवों से बात करते करते भीष्मदेव को बहुत आंखों से आंसू आने लगते हैं। जब युधिष्ठिर से बात करते रहते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बताते भी हैं, एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्म नंदन जीवितुम नाहतम क्लिष्ट विप्र धर्म च्युताश्रय। इस श्लोक का मीनिंग है कि अहो कष्टम अहो न्यायम, हे धर्म पुत्र, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपके साथ कितना कष्ट हुआ, अहो अन्यायम, आपके साथ कितना अन्याय हुआ, यद यूयम धर्म नंदना, यद्यपि आप धर्म के पुत्र हैं परंतु आपके साथ कितना अन्याय हुआ, जीवितुम नार्हतम क्लिष्टु, आपके साथ इतना अन्याय हुआ कि अगर कोई और होता तो जीवित भी नहीं रह सकता था, परंतु आप इन सभी परिस्थितियों के बाद भी जीवित रहे क्योंकि आपने तीन चीजों का आश्रय लिया, विप्र, धर्म और अच्युत, भगवान विष्णु का आश्रय लिया, धर्म का आश्रय लिया और ब्राह्मणों और वैष्णवों का आश्रय लिया। श्रील प्रभुपाद बताते हैं उसके तात्पर्य में कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में इन तीन आश्रयों को स्वीकार करना चाहिए, विप्र का आश्रय मतलब ब्राह्मणों और वैष्णवों का आश्रय, धर्म का आश्रय और अच्युत भगवान विष्णु का आश्रय। इन तीन को जो आश्रय स्वीकार करता है उसको जीवन में कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होती है। और साथ में विष्णुदेव बताते हैं कि ये सब भगवान की लीला है, आपके साथ जो भी हुआ, यद्यपि आप धर्मराज हैं, आप सभी के सभी जो भाई हैं वो कोई ना कोई देवताओं के पुत्र हैं, परंतु आपके साथ इस प्रकार से हुआ, इसको केवल इसी तरह से समझ सकते हैं कि काल शक्ति के कारण ऐसा हुआ। और फिर बोलते हैं ये काल शक्ति एक्चुअली भगवान कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण का ही एक शक्ति है काल शक्ति, तो भगवान कृष्ण के प्लान कोई नहीं समझ सकता है। बहुत अच्छा श्लोक आता है उसमें, भीष्मदेव बताते हैं कि कौन सा श्लोक है वो, सर्वम काल कृतम मन्ये, उस श्लोक में आता है। और नहीं यस्य कथित राजन, भगवान के जो प्लान है वो किसी को समझ में नहीं आता है। और फिर लास्ट में बताते हैं कि ये जो आपके बगल में जो कृष्ण खड़े हैं यही आदि पुरुष हैं, आद्यो नारायण पुमान मूढ़यन मायाया लोकम गूढ़श्चरति विष्णुसु। ये विष्णु वंश में सामान्य मनुष्य की जैसे घूमते हैं, परंतु वास्तविकता में ये नारायण के भी आदि हैं। ये सब वही भगवान साक्षात कृष्ण की तरफ इशारा करते हैं कि इनकी लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता है किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, इसलिए आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने आप को इन कृष्ण के लिए समर्पण कर दीजिए। और फिर युधिष्ठिर को समझाते हैं, युधिष्ठिर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी आपको भगवान की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए और इस संसार को राज्य करना चाहिए, और अपनी प्रजा, ऐसी प्रजा जिसको बहुत दुख मिल चुके हैं महाभारत युद्ध के बाद, उस प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। और फिर भीष्मदेव इतना, युधिष्ठिर भी भीष्मदेव से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उसमें भीष्मदेव उत्तर भी देते हैं। एक्चुअली बहुत बड़ा सेक्शन है भीष्म पर, महाभारत के अंदर भीष्म ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो युधिष्ठिर को, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है उसमें कि दान धर्म, स्त्री धर्म, यज्ञ धर्म, राज्य धर्म, वर्णाश्रम धर्म, सभी का डिस्क्रिप्शन आता है भागवत धर्म। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो महाभारत में भीष्म पर्व में आप पढ़ सकते हैं, भीष्मदेव के निर्देश। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज को जब समझाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, और सब कुछ बोलने के बाद फिर भीष्मदेव भगवान कृष्ण के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वो बताते हैं कि यद्यपि भगवान कृष्ण सभी के लिए समान है, परंतु मेरे ऊपर स्पेशल कृपा करके जब मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ उस समय भगवान कृष्ण मेरे सामने प्रकट हुए हैं। और ऐसे भगवान जिनका चतुर्भुज रूप है और जिनका सुंदर सुंदर चेहरा जो है स्माइल करता हुआ चेहरा, ऐसा लगता है जैसे उगता हुआ सूर्य हो, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे सामने उपस्थित रहे हैं जब मैं अपने शरीर का त्याग कर रहा हूँ। और भीष्मदेव बताते हैं भगवान के शारीरिक सौंदर्य को, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौरव रंग दधाने, भगवान के शारीरिक सुंदरता को बताते हैं कि तीन जगह से भगवान बैंट करते हैं, त्रिभुवन कमलम, और तीनों संसार के तीनों लोक जो हैं त्रिभुवन, थ्री प्लेनेटरी सिस्टम, इन सभी को भगवान मोहित करते हैं। तमाल वर्णम, भगवान के शरीर का रंग तमाल वृक्ष के समान है, भगवान की आंखें सूर्य के समान है, और भगवान की सुंदरता ऐसा लगता है कि सौंदर्य शब्द फीका पड़ता है उनके सामने। और साथ साथ भगवान बताते हैं कि युद्ध भूमि में जब मैं अपने तीरों से अर्जुन से फाइट करता था तो मुझे भगवान का सौंदर्य दिखाई देता था, और अर्जुन ने भी उस भगवान के उस सौंदर्य को नहीं देखा, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के पीछे थे और मैं भगवान के सामने था, और भगवान की उपस्थिति के कारण जितने लोगों की मृत्यु हुई उनको भगवान ने डिलीवर कर दिया, मुक्त कर दिया। और भगवान वो याद भी दिलाते हैं कि एक बार मैंने जब शपथ ली थी कि अगर भगवान शस्त्र नहीं उठाएंगे तो अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, तो मेरी शपथ की रक्षा करने के लिए और अपने मित्र अर्जुन को बचाने के लिए भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया था, इसलिए भगवान का नाम हुआ था रथांग पाणी, रथ के पहिए को अपने ऊपर धारण करने वाले। और साथ साथ भगवान भीष्मदेव बताते भी हैं कि भगवान की सबसे सबसे महान भक्त गोपियां जो हैं मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि गोपियाँ मुझे आश्रय प्रदान करें, भगवान की शुद्धि को प्रदान करें। और इतना बोलने के बाद भीष्मदेव शांत हो जाते हैं। भीष्मदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी मुझे अपने थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग इसको भगवान में इन्वेस्ट करना चाहिए। पूरे जीवन भर मैंने अलग अलग विषयों के बारे में सोचा, अभी मैं जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। भगवान पूरी तरह से संतुष्ट हैं, परंतु कई बार वो भक्तों के लीडर होने के कारण इस संसार में आते हैं, तो उनका सुंदर शरीर जो है, जो इस संसार में सभी को आकर्षित करता है, वो मेरे ध्यान का केंद्र हो, जिससे कि मैं अपने भौतिक सारी इच्छाओं को छोड़ के भगवान को समर्पित हो सकूं। और फिर और बताते हैं कि भगवान जब अर्जुन का रथ ड्राइव कर रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो भगवान के बालों में बहुत सारी डस्ट, कुरुक्षेत्र की जमीन की डस्ट जो थी, उसके कारण बाल उनके जो थे वो ग्रे कलर के हो गए थे। और उनके इतने कठिन मेहनत के कारण भगवान के चेहरे के ऊपर पसीना आ गया था। भगवान को ये जो डस्ट है ये पसीना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनकी भक्त की सेवा के कारण भगवान के ऊपर आ रहा था। और कई बार मेरे तीर भगवान के शरीर में लगते थे, भगवान उसको भी एंजॉय करते थे, क्योंकि भगवान वीर वेश में मुझसे सेवा लेना चाहते थे। और मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने अपने प्रॉमिस को भी सेक्रीफाइस कर दिया। अपने रथ से उतर के उन्होंने एक रथ का पहिया लिया और मेरी तरफ उसी तरह से दौड़े जिस प्रकार से कोई शेर हाथी के ऊपर अटैक करता है। इसका बैकग्राउंड भी भीष्म पितामह बताते हैं कि दुर्योधन ने मुझे क्रिटिसाइज किया था कि मैं अर्जुन को नहीं मारना चाहता हूँ, इसलिए मैंने शपथ लिया था कि अगर मैं कल अर्जुन को मार दूंगा, अगर अर्जुन केवल एक ही सूरत में बच सकते हैं, अगर भगवान कृष्ण अपने शस्त्र उठाएंगे तब अर्जुन बच पाएंगे, नहीं तो अर्जुन बचेंगे नहीं। और दुर्योधन ने 5 तीर दिए और भीष्म ने बोला इन 5 तीरों से मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। और दुर्योधन ने वो तीर अपने पास रख लिए, बोला कि कल सुबह मैं आपको ये दे दूंगा तीर। भगवान कृष्ण को जब ये पता चला तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि देखो, दुर्योधन ने एक बार तुम्हें आशीर्वाद दिया था जब तुमने उसको बचाया था कुबेरों से, दुर्योधन ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि एक बार तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो पूरी करेगा, तो आज रात में तुम जाके वो 5 तीर लेके आओ। तो अर्जुन वो तीर लेके आए और बाद में पितामह को ये पता चला कि कृष्ण के बोलने के कारण अर्जुन वो तीर लेके चले गए। तो उसके बाद पितामह ने फिर ये शपथ ली कि कल मैं 5 पांडवों को मार दूंगा अगर भगवान ने अपने अस्त्र नहीं उठाए तो। तो अर्जुन को इस प्रकार से डेंजर में देख के भगवान ने रथ के पहिये को उठाया और मेरी तरफ मुझे मारने के लिए आए, तब मैंने सरेंडर किया भगवान के सामने। और भीष्मदेव प्रार्थना करते हैं कि इस मृत्यु के समय अभी मैं चाहता हूं कि मैं भगवान के उसी रूप को लगातार देखता रहूं, वो उस रूप जो पार्थ सारथी, अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान जो स्थित थे, जो कि घोड़ों रथ की जो लगाम थी उसको अपने लेफ्ट हैंड में लिए थे और एक लकड़ी को अपने राइट हैंड में लिए थे, और उनके पीछे अर्जुन रहते थे और भगवान रथ को हाँकते थे। और भगवान ने इतने अच्छे से उस रथ को हाँका कि उस रथ की बराबरी कोई भी नहीं कर पाते थे। भगवान की अनुपस्थिति में अर्जुन को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु भीष्मदेव बताते हैं केवल भगवान उस रथ पे उपस्थित थे इसलिए अर्जुन को मारना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, कोई उनको कुछ नहीं कर सकता था। और आगे भीष्मदेव और भी याद करते हैं कि मैं उस समय भी उपस्थित था जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण को सबसे पहले व्यक्ति के समान पूजा गया था उस राजसूय यज्ञ के समय। मैं हमेशा याद करता हूँ वो इंसिडेंट, जिससे कि मैं भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकूं। और अभी मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान लगा सकता हूँ अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि वो खुद मेरे सामने आके खड़े हुए हैं जब मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूँ। इस तरह से बोल के भीष्मदेव शांत हो जाते हैं, अपने मन को, अपनी वाणी को और अपनी आंखों को भगवान के ऊपर केंद्रित करते हैं और उनकी ब्रीदिंग रुक जाती है, वो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। जब लोग सब सभी को समझ में आता है कि भीष्मदेव भगवत धाम चले गए हैं, तो सभी शांत हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे दिन खत्म होने के बाद चिड़िया शांत हो जाती हैं और फिर आकाश में धुंध भी बजती है, देवता लोग धुंध भी बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं और भीष्म देव के ऊपर फूलों की वर्षा होती है। महाराज युधिष्ठिर भीष्म देव के अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, फिर सभी के सभी ऋषि मुनि भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हुए फिर वापस चले जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर वापस आ जाते हैं और धृतराष्ट्र और गांधारी जो कि बहुत दुखी थे उनको भगवान सांत्वना प्रदान करते हैं। तो भीष्म देव के इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को समझाने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने अपना दुख त्याग दिया था, उन्होंने धरती का राज्य प्रारंभ करना धरती का रा, धरती पर राज्य करना प्रारंभ कर दिया था अपने भाइयों के साथ। और युधिष्ठिर महाराज के राज्य के समय धरती में हमेशा हमेशा अच्छी बरसात होती थी जो कि लोगों के लिए फायदेमंद होती थी, रेगुलर रेनफॉल होती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि एक साल बरसात हुई फिर दूसरे साल सूखा हो गया। और उस समय मनुष्य को जो भी वस्तुओं की आवश्यकता थी धरती उसको सप्लाई करती थी और गाय इतनी खुश रहती थी कि गाय के जो मिल्क बैग है हमेशा भरे रहते थे। और उस खुशी के कारण गाय जो दूध दूध जो था वो ग्राउंड में भी गिरता रहता था, जब गाय चरने के लिए जाती थी तो दूध गिरता रहता था गाय खुशी होने के कारण। और इसके अलावा नदियां समुद्र पहाड़ और जंगल ये सभी फल फूल और हर प्रकार की वस्तुओं से भरे हुए थे क्योंकि महाराज युधिष्ठिर के राजा थे। इससे पता चलता है कि अगर राजा बहुत अच्छा है तो प्रकृति भी राजा को मदद करती है, अगर राजा भगवत भक्त है तो उसकी प्रजा हमेशा सुखी रहती है क्योंकि प्रकृति भी चाहती है कि सभी वस्तुएं भगवान की हैं और भगवान के भक्त उसको उपयोग करें। परंतु तो सामान्यतः जब लोग भक्ति नहीं करते हैं नास्तिकवादी होते हैं तब प्रकृति इन वस्तुओं को छुपा लेती है। उस जब प्रकृति इनको छुपा लेती है तो फिर व्यक्तियों को रिसोर्सेस कम पड़ते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर के समय में हर वस्तु सफिशियंट थी क्योंकि महाराज युधिष्ठिर एग्जैक्टली शास्त्र के आधार पे नियम का नियम शास्त्र के नियमों के आधार पे राज्य करते थे। इसलिए उनकी प्रजा भी बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, प्रजा को कोई मेंटल प्रॉब्लम भी नहीं थे, दुख भी नहीं थे और कोई शारीरिक समस्या भी नहीं थी। तो इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में कुछ महीने तक रहते हैं, उसके बाद वो युधिष्ठिर महाराज के पास जाके फिर से परमिशन लेते हैं जाने के लिए। और ये भगवान झुक के युधिष्ठिर महाराज के चरण छूते हैं, ये भी बहुत अमेजिंग चीज है। यद्यपि भगवान खुद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है परंतु युधिष्ठिर के पैर छूते हैं, अपने सुपीरियर्स के पैर छूते थे। तो भगवान जब आते हैं तो सारे वैदिक नियमों का पालन करते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं जिससे कि लोगों को उसका फॉलो करना आसान हो। तो भगवान ने युधिष्ठिर के चरण को छुआ, युधिष्ठिर ने भी उनको उठाया और गले से लगाया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने बाकी सभी को गले से लगाया और अपने रथ को लेके निकल जाते हैं। उस समय सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गांधारी धृतराष्ट्र युयुत्सु कृपाचार्य धौम्य और पांडव ये सभी ऑलमोस्ट भगवान के विरह के दुख में ऑलमोस्ट बेहोश होने लगते हैं। उनको लगता है कि भगवान के बिना जीवित रहना बहुत मुश्किल है। भगवान को देख रहे थे और जैसे ही भगवान को जाते हुए देख रहे थे तो वो अपने मन को समझा नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार से भगवान को जाने से रोके। तो ऐसा बताते हैं कि उनकी आंखें भी झपकना बंद हो गई थी और जो महल की जो स्त्रियां थी जो कि रोड पे आके भगवान के दर्शन नहीं कर सकती थी वो ऊपर छत पे जाके महल की छत पे जाके भगवान कृष्ण के दर्शन कर रही थी और दर्शन करके वो रो रही थी। परंतु अपने रोते हुए भी वो बोल रही थी कि हमें ज्यादा रोना नहीं चाहिए क्योंकि कोई अगर जा रहा हो अगर हम ज्यादा रोते हैं तो उसके लिए शुभ नहीं होता है। इसलिए वो लोग रोने से भी डर रहे थे कि इस तरह से भगवान के जाते समय रोना अच्छा नहीं है। और इस प्रकार से कुरु वंश की जो रानियां थी वो भगवान के बारे में लगातार वार्तालाप कर रही थी और छत के ऊपर खड़े होकर भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा भी कर रही थी। अलग अलग प्रकार के ड्रम और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भगवान के सम्मान में बजाए जा रहे थे। भगवान के सिर के ऊपर एक छाता अर्जुन लगाए हुए थे, अर्जुन भगवान के एक सेवक के जैसे जा रहे थे और उद्धव और सात्यकी भगवान को पंखा झेल रहे थे और ब्राह्मण भगवान को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और ऊपर छत पे जो लेडीज खड़ी थी वो ये डिस्कशन कर रही थी कि भगवान कृष्ण की जो रानियां हैं द्वारका में उनका कितना बड़ा सौभाग्य है और गोपियां जो वृंदावन में है उनका कितना बड़ा सौभाग्य है क्योंकि वो भगवान के दर्शन हर दिन करती है, भगवान का संग उनको प्राप्त होता है। और ऐसा बताते हैं उस श्लोक में सर्वश्रुति मनोहरा, ये जो स्त्रियां जो बातचीत कर रही थी उनकी जो बातचीत थी वेदों की स्तुति से भी ज्यादा आकर्षक, वेदों की स्तुति से भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। भगवान कृष्ण ने उनके ऑफर को स्वीकार किया और फिर भगवान युधिष्ठिर से परमिशन लेने के बाद हस्तिनापुर से निकलते हैं। हालांकि भगवान खुद पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको कोई रक्षा की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रेम के कारण युधिष्ठिर एक सेना को भगवान के साथ भेजते हैं जिससे कि भगवान के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सके। केवल प्रेम के कारण इस प्रकार से होता है लीला के लिए। और युधिष्ठिर उनके भाई सभी लोग भगवान से कुछ दूरी तक उनके उनके साथ आते हैं भगवान के प्रति प्रेम के कारण। फाइनली भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं वापस जाने के लिए और फिर भगवान द्वारका जाने के लिए निकलते हैं। तो कहाँ कहाँ से भगवान निकल के जाते हैं इसका डिस्क्रिप्शन भी आता है। टेक्निकली अगर हम देखें तो इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली में है, तो दिल्ली से द्वारका अगर भगवान जाते हैं तो ऑलमोस्ट इसी जगह से निकलेंगे, बड़ौदा अहमदाबाद इनके आसपास के एरिया से भगवान निकलते हैं। उस समय बड़ौदा नाम से कोई जगह नहीं थी, ये तो जंगल एरिया था जो हिडिंब राक्षस का वन था ये। और बड़ौदा तो नया है, मतलब वहां 5000 साल पहले ये नहीं था, तो यहाँ पे 5000 साल पहले के नाम दिए गए हैं। कुरु जंगल, पांचाल, सूरसेन, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, इस तरह से निकलते हैं भगवान। इन सब जगह को पार करते करते इसमें लिखा है कुछ मध्य प्रदेश का भी हिस्सा था जहां से निकले थे, और फिर गुजरात के हिस्से से निकलते निकलते सौराष्ट्र पहुंचते हैं, द्वारका पहुंचते हैं। तो हर रात में भगवान अपनी यात्रा को सस्पेंड करते थे जिससे कि रात में वो अपने आध्यात्मिक क्रियाकलाप कर सकें। और जहां भी भगवान जाते थे लोकल लोग उनको फॉलो करते थे, वेलकम करते थे, उनका सम्मान करते थे। फाइनली सौवीर और आभीर के राज्यों को पार करके भगवान द्वारका के बाहर पहुंचते हैं। और द्वारका के बाहर पहुंच के भगवान अपना शंख बजाते हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छे से बताया गया है भगवान का शंख बजाना। ऐसा बताते हैं कि भगवान के पूरा हाथ जो है वो नीला कलर का है, हल्का नीला कलर का है, और शंख जो था वो सफेद था, और भगवान के हाथ की हथेलियां जो है वो लाल है। तो ऐसा लग रहा था कि कोई एक कमल है, कमल की जो डंडी है वो नीले कलर की है, और लाल कमल है, कमल लाल कलर का है, उसके ऊपर एक वो हंस बैठा हुआ है। इस प्रकार से भगवान के हाथ में शंख फील हो रहा था। और जब भगवान ने शंख बजाया, पांच जन ने शंख, तो इस शंख को सुन के, जिस प्रकार से भगवान की बांसुरी सुन के गोपियां एकदम दौड़ी दौड़ी भाग के आ जाती थी, उसी प्रकार से जब भगवान ने शंख बजाया तो द्वारका के जो वासी थे वो सभी के सभी वासी एकदम से जो भी काम कर रहे थे काम करते करते छोड़ के एकदम बाहर आ गए। द्वारका के वासियों ने बहुत समय से भगवान से भेंट नहीं की थी क्योंकि भगवान बहुत लंबे समय से हस्तिनापुर में थे कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण, परंतु जब उन्होंने यह शंख सुना तुरंत वो सिटी के बाहर आ गए। और जैसे ही भगवान के सामने आते हैं तो द्वारका के जो रेसिडेंट हैं उनको अलग अलग गिफ्ट गिफ्ट ऑफर करते हैं और उनको वेलकम करते हैं। द्वारका के वासियों की प्रार्थनाएं भी हैं इस प्रकार से कि हे भगवान, हमारा ये सौभाग्य है कि हम फिर से आपके शरण में आए हैं, अभी फिर से हम आपको देख पाएंगे लगातार। और हे भगवान, जब भी आप मथुरा जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं अपने मित्रों से मिलने के लिए, तो आप जब यहाँ नहीं रहते हैं तो आपके एब्सेंस में हमें एक मिनट भी 10,00,000 सालों के समान लगता है। ऐसा लगता है कि हमारी आंखें यूजलेस हैं क्योंकि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। और फिर अगर आप हमेशा हमसे दूर रहेंगे तो फिर हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, हम जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। इस प्रकार से वो प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से। भगवान जब द्वारका में एंटर होते हैं तो इन सभी प्रार्थनाओं को रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान सबसे मिलते हैं, सबसे हालचाल पूछते हैं, और वो देखते हैं कि द्वारका सिटी को बहुत अच्छे से सजाया गया है, सारी गलियां, मार्केट प्लेस, पार्क, सबको एकदम साफ किया गया है, और हर घर पे बहुत अच्छे अच्छे जो कि शुभ वस्तुएं हैं उस घर पे लगाया गया था भगवान के दर्शन के लिए, जैसे दही, फल, गन्ना, लैंप, अगरबत्ती और पानी के मटके हर घर के बाहर रखे हुए थे भगवान को वेलकम करने के लिए। भगवान के बारे में भगवान के आने का समाचार सुन के वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, ये सभी अपने अपने जो भी क्रियाकलाप कर रहे थे उसको छोड़ के भगवान के पास आते हैं। और हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज भगवान के दर्शन करने आते हैं। बहुत सारे ड्रामाटिस्ट, सिंगर, डांसर, स्पीकर भगवान को अपना अपना टैलेंट के द्वारा भगवान की से पूजा करने के लिए आते हैं। भगवान सभी को अलग अलग प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। जो इक्वल्स होते हैं उनको गले लगाते हैं, जो छोटे होते हैं वो भगवान के चरण स्पर्श करते हैं, जो बड़े होते हैं भगवान उनके सामने झुकते हैं। इस प्रकार से भगवान सबको सम्मान करके आते हैं। और जब वो पब्लिक रोड से निकलते हैं तो द्वारका की सारी स्त्रियां भगवान के ऊपर से देखते हैं। और जब अपने पिता के पैलेस महल में पहुंचते हैं, देवकी और वसुदेव से मिलते हैं भगवान। देवकी भगवान को प्रणाम करती हैं, भगवान नो देवकी भगवान को गले से लगाते हैं और भगवान देवकी के चरण स्पर्श करते हैं। उसके बाद जब भगवान अपने खुद के पैलेस में जाते हैं तो उनकी जो पत्नियां हैं, द्वारका की जो रानियां हैं, बहुत खुश हो जाती हैं भगवान को देख के। इतने लंबे समय के बाद भगवान को देख के वो भगवान के ऊपर ध्यान करती रहती है। और भगवान एकाएक आते हैं तो तुरंत दौड़ के भगवान के पास जाते हैं। और जब वो भगवान को अपनी आंखों से देखते हैं तो सबसे पहले अपनी आंखों से ही भगवान को वो गले से लगाते हैं, अपने हृदय में भगवान को स्थापित करते हैं। उसके बाद उनके पुत्र जो होते हैं दौड़ के भगवान को आके एम्ब्रेस करते हैं, गले से लगाते हैं। और इस प्रकार से भगवान अपनी पत्नियों को, अपने माता पिता को, द्वारका के वासियों को एक असीम आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं। इसमें लास्ट में आता है कि ये द्वारका की जो रानियां थी, ये भगवान को अपने बिलवेड हस्बैंड के समान समझती थी, परंतु उनको भगवान की ग्लोरीज के बारे में इतना पता नहीं था। द्वारका की रानियां इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता को देख के कामदेव, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तक मोहित हो जाए, परंतु भगवान कृष्ण उनकी सुंदरता से मोहित नहीं होते थे। क्योंकि भगवान जो है स्वयं आत्म आप्त काम बोला जाता है, भगवान अपने आप में तुष्ट होते हैं, संसार की कोई भी और चीज से उनको संतुष्टि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान उनके साथ केवल उस प्रकार से व्यवहार करते थे जैसे वो अपने भक्त के साथ, उनकी भक्ति के कारण भगवान प्रसन्न थे, इसलिए उनसे इस प्रकार से व्यवहार करते थे। तो इसलिए जो भी भक्त भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं वो कभी भी भौतिक तीन गुणों के संपर्क में नहीं आते हैं, तीन गुणों से हमेशा वो ऊपर रहते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया भगवान के द्वार का आने तक। नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे परीक्षित महाराज का जन्म और धृतराष्ट्र किस प्रकार से अपना घर त्याग करते हैं, फिर पांडव राज्य को त्याग करते हैं, परीक्षित को राजा बनाते हैं, उसके बाद परीक्षित के राज्य का डिस्क्रिप्शन, और फिर परीक्षित को सांप मिलता है, और फिर भागवतम स्टार्ट होता है। तो वो हम नेक्स्ट फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जो अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों की मीन्स हत्या करी थी पांडवों की, तो उसके
हाँ
पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन था कि भगवान ने उनकी रक्षा नहीं करी? जैसे कि परीक्षित महाराज के पिता अमन्यु का पता था कि उनके चंद्रदेव के पुत्र थे, तो उनको उनको जाना था 6 मतलब जल्दी 15 साल की उम्र में। इसके
हाँ
पीछे इसमें भी कोई रीजन था प्रभु जी?
हाँ द्रौपदी के 5 पुत्र जो थे वो पिछले जन्म में ऋषि पुत्र थे। ऋषि पुत्र मतलब इन द सेंस ऐसे ऋषि मुनि के पुत्र नहीं थे, परंतु तो उनके पिता एक राजर्षि के समान थे। और उनका जैसे इनको श्राप मिला था, किसको, भीष्म पितामह और उनके जो 7 वसु थे उनको श्राप मिला था, उसी तरह से इनको इनको श्राप मिला था कि इनको भौतिक संसार में आना होगा। और फिर चूंकि वो भगवान के भक्त भी थे साथ में, तो फिर भगवान की प्रेजेंस का उनको फायदा मिला, भगवान का एसोसिएशन मिला, उसके कारण शुद्ध भक्ति प्राप्त किए। परंतु वो भौतिक संसार में रहना नहीं चाहते थे, मतलब मनुष्य लोक में, तो इसलिए बहुत कम समय में वो वापस चले गए। तो देव पुत्र जैसा माना जा सकता है उनको। ओके, नेक्स्ट फ्राइडे फिर हम मिलते हैं। अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो नेक्स्ट फ्राइडे इसके आगे डिस्कस करेंगे, परीक्षित महाराज के जन्म से प्रारंभ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भागवतम महापुराण की जय। अच्छा एक एक और प्रश्न है, भगवान की वास्तविक इच्छा क्या थी? उनकी वास्तविक इच्छा क्या ये थी कि अर्जुन अश्वत्थामा को नहीं मारे, पर बाहर से वो बोल रहे थे मानने के लिए? हाँ भगवान जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर गोवर्धन जाता है, गोवर्धन या वृंदावन जाते हैं, तो आपने देखा होगा गोवर्धन में एक एक मिठाई की दुकान फेमस है, गिरिराज मिठाई भंडार कुछ इस तरह से नाम है। तो मान लो दो मित्र, दो फ्रेंड जाते हैं वहां से मिठाई लेते हैं। एक फ्रेंड देखता है उसके बैग में मिठाई रखी हुई है, तो दूसरे फ्रेंड से पूछता है, ये मिठाई आपने मेरे लिए खरीदी है? तो ये बोलता है, नहीं नहीं मैंने आपके लिए नहीं खरीदी है, मैं तो किसी और को देना चाहता हूँ। तो ये व्यक्ति इंटरनली अपने मित्र को ही देना चाहता है, परंतु एक्सटर्नली वो बोलता है, नहीं नहीं आपके लिए नहीं खरीदा। फिर बाद में उस मित्र को पीछे से वो देता है। तो कई बार मित्रों के बीच में इस प्रकार से डीलिंग होती है। भगवान उससे बोल रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि तुम्हें इसको मारना है, परंतु भगवान चाहते थे कि अर्जुन का इंटेलिजेंस का टेस्ट करें कि कैसे वो मेरी इच्छा को भी पूरे करते हैं, द्रौपदी की इच्छा को भी पूरा करते हैं, भीम की इच्छा को पूरा करते हैं, युधिष्ठिर की इच्छा को पूरा करते हैं। तो इंटरनली भगवान अर्जुन का परीक्षा ले रहे थे। और भगवान ऑब्वियसली चाहते थे कि उसको मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों को और गुरु पुत्रों को मारा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से वो फ्रेंडली रिलेशन है, नहीं तो सामान्यतः भगवान जो ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर मानना चाहिए। अर्जुन हमेशा भगवान के ऑर्डर मानते थे, परंतु इस केस में भगवान का ऑर्डर अर्जुन ने नहीं माना डायरेक्टली। भगवान तो बोल रहे थे उसको मार दो, परंतु अर्जुन ने नहीं माना, क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि भगवान जो बोल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो है मोटिव पीछे। और अर्जुन का भगवान के साथ इस प्रकार से संबंध था, मित्रता का इतना डीप संबंध था कि वो समझ सके। ओके, श्रीमद भागवतम महापुराण की जय।